ईरानी संस्कृति और कला।
श्रोताओं, कार्यक्रम ईरानी संस्कृति और कला की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं स्वाति और हसन अब्बास का सलाम स्वीकार करें।
शम्सुल माली काबूस बिन वोशमगीर एक अत्यंत दक्ष लेखक थे कि जो आले जियार श्रृंखला के सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा के रूप में सत्ता चला रहे थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वे दक्ष योद्धा भी थे, लेकिन कभी कभी वे अपने मातहतों पर अत्याचार भी करते थे। इसी वजह से वे अपने ही एक सरदार के हाथों मारे गए। कहते हैं कि इस शासक को गुंबद काबूस के नीचे दफन कर दिया गया और ईरान की यह इमारत इसीलिए गुंबद काबूस के नाम से प्रसिद्ध हुई।
राजी शैली ईरानी शिल्पकला की चौथी शैली है, जिसमें पहले वाली शैलियों की सभी विशेषताएं अत्यधिक उत्तम रूप में पाई जाती है। राजी शैली की शिल्पकला में पारसी शैली का सौंदर्य, पारथी शैली का वैभव और खुरासानी शैली की सूक्ष्मता एक साथ नजर आती है। इस शैली का आरंभ भले ही उत्तरी ईरान से हुआ हो, लेकिन यह शैली शहरे रे में परवान चढ़ी और इसीलिए इस शैली को राजी शैली कहा जाता है। राजी शिल्पकला की शैली आले जियार शासन काल से आरम्भ हुई और ख्वारिज्म शाहियान काल में अपने पतन के निकट पहुंची और ईरान में शिल्पकला के क्षेत्र में लगभग 300 वर्षों तक इस शैली का बोलबाला रहा है।
दूसरी तीसरी शताब्दी हिजरी कमरी में ईरान के अर्ध स्वाधीन शासनों के गठन के साथ ही एक ऐसा आंदोलन आरंभ हुआ जो इस्लामी काल में ईरान की साहित्यिक व वैज्ञानिक पुनर्जागरण के काल से प्रसिद्ध है। इस आंदोलन के आरंभ होने के ये कारण रहे हैं। इस्लामी विचारधारा का चलन हो गया था और अतीत की सामाजिक वर्गीकरण की व्यवस्था का पतन हो चुका था और ईरान के समाज के सभी वर्गों को पढ़ने लिखने का अवसर प्राप्त हो गया। इसके साथ ही चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ और वो पहली शताब्दी हिजरी में समरकंद पहुंच गया, जिसकी वजह से ईरान में किताबें लिखे जाने का सिलसिला तेज हो गया। इसके अलावा समाज इस सीमा तक विकसित हो चुका था कि उसमें एक दूसरे से उनके विचारों के बारे में चर्चा की जाती थी और बहस व शास्त्रार्थ का दौर चलता था, जिसके बड़े सकारात्मक परिणाम सामने आए। इस प्रकार से शिल्प कला पर भी इस दौर में सांस्कृतिक व वैज्ञानिक विकास का प्रभाव पड़ा। यही वजह है कि बहुत से लोग राजी शैली को ईरानी कला के पुनर्जागरण का युग कहते हैं, जो खेदजनक रूप से मंगोलों के आक्रमण और उनकी विनाश लीला के कारण खत्म हो गई।
राजी शैली की शिल्पकला का आरंभ रे शहर में हुआ, जो इस समय के तेहरान के दक्षिण में स्थित है। यही वजह है कि इस शैली के उत्कृष्ट नमूनों का निर्माण इसी नगर में हुआ। रे या राज नामक यह क्षेत्र जहां राजी शैली का जन्म हुआ, तथ्यों के अनुसार बेहद समृद्ध क्षेत्र था। जैसा कि हफ्त एकलीम नामक किताब में लिखा गया है कि इस इलाके में 6000 पाठशालाएं और सूफी केंद्र, 400 हम्माम, 1700 मीनारें और 15000 कुएं थे। कुछ लेखकों ने रे नगर की आबादी उसकी समृद्धता के दौर में लगभग 15 लाख बताई है। यह समृद्ध नगर सन 617 हिजरी कमरी में चंगेज खान के हाथों तबाह हो गया और उसकी सभ्यता व समृद्धता के चिन्ह काफी हद तक खत्म हो गए। कभी विश्व की दुल्हन कहे जाने वाले इस नगर पर चंगेज खान की चढ़ाई से उसे इतना नुकसान पहुंचा कि फिर वह कभी भी अपनी पुरानी समृद्धता को दोहरा नहीं पाया।
राजी शैली में विभिन्न उद्देश्यों के लिए इमारतें विशेष गुणों के साथ बनाई जाती हैं, जैसे मस्जिद, मीनारें या बुर्जियों वाले मकबरे। बुर्जी वाले मकबरे ऊंची और पतली इमारत होती थी, जिसे खंभे की तरह बनाया जाता था। इस तरह की बहुत सी इमारतों में साधारण ईंटों का प्रयोग किया गया है, जबकि कुछ इमारतों की बाहरी दीवारों पर सजावट भी नजर आती है।
इस प्रकार की इमारतों में सबसे अधिक प्रसिद्ध इमारत गुंबद काबूस है, जिसे सन 1006 ईस्वी में उत्तरी ईरान के गुरगान नगर में बनाया गया था। या विश्व में ईंट से बनने वाली ऊंची इमारतों में से एक है, जो वास्तव में नगर पहुंचने का चिन्ह भी था। इसकी ऊंचाई लगभग 5.5 मीटर है, जिसे 15 मीटर ऊंचे टीले पर बनाया गया है। गुंबद काबूस शंकुवा आकार है और उस पर निर्माण करने वाले के नाम और निर्माण के समय के अतिरिक्त कोई भी लेख नजर नहीं आता। इसकी गुंबद का भीतरी व्यास 10 मीटर है और गुंबद को 2 परतों में बनाया गया है।
राजी निर्माण शैली में कुछ मस्जिदों में खंभों वाली दालान को 4 दालानों वाली बना दिया गया। इस शैली में मेहराब के निकट के और बीच में खड़े खंभों को हटा दिया गया और उसे एक 4 दालानों वाले एक बड़े स्थल में बदल दिया गया कि जिसके ऊपर एक गुंबद बनाया गया हो। कुछ इतिहासकारों ने जवारेह मस्जिद को ऐसी पहली मस्जिद बताया है जिसे 4 दालानों के साथ बनाया गया हो। यह मस्जिद सन 530 हिजरी कमरी अर्थात सन 1135 ईस्वी में प्रसिद्ध शिल्पकार उस्ताद महमूद इस्फहानी द्वारा बनाई गई। पुरानी मस्जिद वर्तमान मस्जिद के उत्तरी भाग के तहखाने में मौजूद है। हॉल की छत बहुत ऊंची है और उस पर गुंबद बनाया गया है। इस मस्जिद को चूने के काम से बेहद अच्छी तरह से सजाया गया है।
इस शैली में बनाए गए गुंबद प्राय 2 परतों के साथ होते हैं और उसका बाहरी रूप विविधतापूर्ण होता है। गुंबद की सजावट में ईंट के छोटे बड़े टुकड़े प्रयोग किए जाते हैं तथा इमारत में विभिन्न स्थानों पर कूफी लिपि शैली और कुरान मजीद की आयतें नजर आती है। राजी शैली में शिकस्ता लिपि शैली भी नजर आती है, जो ईंट और टाइल्स के साथ मिलकर किसी भी इमारत को वैभव प्रदान करती है। इस शैली में टाइल्स के टुकड़ों को नगीनों की तरह बड़े साधारण तरीके से ईंटों के बीच जड़ा जाता है। इस काल की शिल्पकला में चूने का काम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है और राजी शिल्पकला शैली में शीर शकरी, बर्जस्ता, जबरे व बरहश्ते जैसे बहुत सी शैलियों से चूने का काम होता है। चूने से सजावट में फूल, पेड़ व पौधे कई कई घुमाव के साथ बनाए जाते हैं, तो दीवारों और गुंबदों को विशेष प्रकार की सुंदरता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार चूने की कटाई की शैली भी इसी काल में आरंभ हुई। इस शैली के अंतर्गत चूने को विभिन्न रंगों के साथ मिला लिया जाता है और फिर जब वह सूख जाता है तो उसे अलग अलग आकार और रूप में काटा जाता है और फिर उन टुकड़ों को टाइल्स की तरह एक दूसरे के साथ मिलाकर इमारत पर लगाया जाता है, जिससे बड़ी खूबसूरत डिजाइनें बन जाती हैं।
इतिहास में मिलता है कि गजनवी शासक और उनके बाद के शासकों ने शिल्प कला पर बहुत अधिक ध्यान दिया। इस काल में बनाई जाने वाली इमारतों की संख्या ही नहीं, उनका आकार भी असाधारण रहा है। कुछ इतिहासकारों ने गजनी में बनाई जाने वाली एक मस्जिद का उल्लेख किया है कि जिसे उसके वैभव की वजह से आकाश की दुल्हन का नाम दिया गया था। इसी प्रकार इस काल में राजा महाराजा अपने शासन की शान और शौकत को महलों से दिखाने की कोशिश करते थे। इतिहास के अनुसार इस प्रकार के एक महल के निर्माण में 4 साल का समय लगा और उसके निर्माण का खर्च 70 लाख दिरहम हुआ था।
जैसा कि हमने बताया, राजी शैली की विशेषता कहा जाने वाला टाइल और चूने का काम सरकारी इमारतों में बहुत ही काम आता था। जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासकार अतबी ने इस प्रकार की इमारतों के रंग व रूप को बसंत ऋतु के बाग से संज्ञा दी है। वह लिखते हैं कि कभी कभी तो ईंट की दीवारों को चूने के प्लास्टर से बने डिजाइनों से इस तरह से छुपा देते थे कि वह रंग बिरंगा कपड़ा नजर आने लगती।
2 परतों वाले गुंबदों का चलन भी इसी राजी शैली की देन है। मुनरो डी विलियर सहित यूरोपीय अध्ययनकर्ताओं के अनुसार 2 परतों वाले गुंबद मध्य एशिया से प्रचलित हुए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि मध्य एशिया की शिल्पकला में पत्थर से बनी इमारतों पर ध्यान दिया जाता था, जबकि ईरान में अधिकतर ईंटों का प्रयोग होता था।
बहरहाल राजी शैली में 2 परतों वाले गुंबद अत्यधिक सूक्ष्मता से बनाए जाते। 2 परतों वाले गुंबदों को इस नाम से याद करने की वजह भी यह है कि इस प्रकार के बने गुंबदों के भीतरी और बाहरी आकार में अंतर होता था। भीतरी भाग अर्ध गोलाकार होता था, जबकि बाहरी भाग अंडाकार और नोकीला होता था। इस प्रकार की शिल्पकला का स्पष्ट व उत्कृष्ट नमूना इस्फहान की जामे मस्जिद का गुंबद है, जिसे पश्चिमी अध्ययनकर्ता श्रोडर ने प्रेरणा स्रोत व कल्पना की दृष्टि से अत्यधिक शक्तिशाली, गणित के अनुसार अत्यधिक सूक्ष्म व संतुलित और तकनीकी दृष्टि से संपूर्ण व त्रुटिहीन बताया है।
Thank you.